हाज अमीन अलहुसैनी ने हॉलोकॉस्ट को उकसाया नहीं, जर्मनी पूरी तरह जिम्मेदार है। यह दावा कि यरूशलम के पूर्व ग्रैंड मुफ्ती हाज अमीन अलहुसैनी ने हॉलोकॉस्ट को उकसाया, एक ऐतिहासिक विकृति है जिसका उद्देश्य नाजी जर्मनी से दोष हटाना और इतिहास के सबसे बड़े अत्याचारों में से एक के वास्तविक मूल को छिपाना है। यह कथन अलहुसैनी की नाजी जर्मनी की नरसंहार नीतियों में भूमिका को अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। हॉलोकॉस्ट की समय रेखा नाजी यहूदी विरोधी विचारधारा की जड़ों और व्यापक साक्ष्यों को नजरअंदाज करता है, जो पूर्ण जिम्मेदारी जर्मनी पर डालते हैं। यह निबंध अलहुसैनी की वास्तविक भूमिका, हॉलोकॉस्ट की समय रेखा, नरसंहार के वैचारिक और परिचालनात्मक प्रेरकों और शैक्षणिक सहमति की जांच करके इस दावे का खंडन करता है और निष्कर्ष निकालता है कि जर्मनी अकेले ही हॉलोकॉस्ट की गंभीर जिम्मेदारी और अपराध का वहन करता है। हॉलोकॉस्ट की समय रेखा, अलहुसैनी की संलिप्तता बहुत देर से हुई। हॉलोकॉस्ट 1941 से 1945 तक नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों द्वारा 6 मिलियन यहूदियों का व्यवस्थित नरसंहार अलहुसैनी के नाजी शासन के साथ महत्वपूर्ण संपर्क से पहले ही शुरू हो चुका था। समय रेखा को समझना इस दावे को खारिज करने के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने नरसंहार को उकसाया। नाजी यहूदी विरोधी नीतियां अलहुसैनी के जर्मनी पहुंचने से बहुत पहले शुरू हो चुकी थीं। नाजी पार्टी, जो 1920 में स्थापित हुई थी, ने अपने कार्यक्रम में यहूदी विरोधी भावनाओं को शामिल किया, जैसा कि इसके 25 सूत्री कार्यक्रम में प्रकट हुआ, जिसमें यहूदियों को जर्मन समाज से बाहर करने की मांग की गई थी। एडॉल्फ हिटलर के 1933 में सत्ता में आने के बाद शासन ने तेजी से दमनकारी उपाय लागू किए। 1933 में यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, 1935 के नूरेमबर्ग कानूनों ने यहूदियों से नागरिकता छीन ली और 1938 की क्रिस्टलनाच पोग्रोम में 91 लोगों की मृत्यु, हजारों की गिरफ्तारी और सभास्थलों का विनाश हुआ। ये नीतियाँ, जो नाजी नस्लीय विचारधारा में निहित थी, अलहुसैनी की संलिप्तता से बहुत पहले हॉलोकॉस्ट का मंच तैयार कर चुकी थी। नरसंहार स्वयं 1941 में शुरू हुआ, जब 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर आक्रमण ऑपरेशन बारबारोसा हुआ। आइनसात सग्रुपेन मोबाइल हत्या दस्तों ने पूर्वी यूरोप में यहूदियों की सामूहिक गोलीबारी शुरू की और 1942 तक 1 मिलियन से अधिक लोगों को मार डाला। आउशविट्स में गैस के पहले प्रयोग सितंबर 1941 में हुए और जनवरी 1942 की वांसी कॉन्फ्रेंस ने अंतिम समाधान को औपचारिक रूप दिया, अर्थात सभी यूरोपीय यहूदियों को नष्ट करने की योजना। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि जब अलहुसैनी ने नवंबर 1941 में एडॉल्फ हिटलर से मुलाकात की, जो नाजी नेतृत्व के साथ उनका पहला महत्वपूर्ण संपर्क था, तब हॉलोकॉस्ट पहले ही चल रहा था। अलहुसैनी, जो 1937 से फिलिस्तीन से निर्वासित था, 1941 में रशीद अली गैलानी के नेतृत्व में असफल अक्ष समर्थक तख्तापलट के बाद इराक से भागकर जर्मनी पहुंचा। उसकी हिटलर के साथ 28 नवंबर 1941 को मुलाकात नरसंहार शुरू होने के कई महीनों बाद हुई। वह एक ऐसी प्रक्रिया को उकसा नहीं सकता था जो पहले ही नाजी विचारधारा और नौकरशाही तंत्र द्वारा संचालित हो रही थी। केवल समयरेखा ही इस दावे को तर्कहीन बनाती है। अलहुसैनी की सहभागिता युद्ध की गतिशीलता का परिणाम थी, न कि हॉलोकॉस्ट का उत्प्रेरक। अलहुसैनी की भूमिका, प्रचार, नीति नहीं। हाज अमीन अलहुसैनी का नाजी जर्मनी के साथ सहयोग, हालांकि नैतिक रूप से निंदनीय था, प्रचार और प्रतीकात्मक समर्थन तक सीमित था, न कि हॉलोकॉस्ट को उकसाने या उसकी योजना बनाने तक। एक फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी नेता के रूप में अलहुसैनी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और फिलिस्तीन में साइनवादी बस्तियों के खिलाफ सहयोगी तलाशे, जिन्हें वह अरब स्वतंत्रता के लिए खतरा मानता था। नाजियों के साथ उसका जुड़ाव एक व्यावहारिक कदम था, जो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है की कहावत में समाहित है, न कि नरसंहार के पीछे प्रेरक शक्ति। 2016 में जेरूसलम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स JCPA द्वारा एक अध्ययन, जो इतिहासकार जेफरी हर्फ ने लिखा, अलहुसैनी की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हाज अमीन अलहुसैनी, नाजी और हॉलोकॉस्ट, सहयोग की उत्पत्ति, प्रकृति और परिणाम शीर्षक से यह अध्ययन स्वीकार करता है कि अलहुसैनी ने 1941 से 1945 तक नाजियों के साथ सहयोग किया, अरब दुनिया में यहूदी विरोधी कथनों को बढ़ावा देकर इस्लामाबाद की राजनीतिक परंपरा को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। उसने अरबी भाषा में प्रचार प्रसारण तैयार किए, मुसलमानों को मित्र राष्ट्रों के खिलाफ अक्ष शक्तियों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया और विशेष रूप से 13वें SS डिवीजन हैंडशायर के लिए वाफिन SS के लिए मुस्लिम सैनिकों की भर्ती में मदद की। हालांकि अध्ययन स्पष्ट रूप से कहता है कि अलहुसैनी का यूरोप में यहूदी प्रश्न के अंतिम समाधान के बारे में नाजी निर्णय लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी भूमिका परिधीय थी, मध्य पूर्व में ब्रिटिश प्रभाव को कमजोर करने के लिए प्रचार पर केंद्रित थी, न कि नाजी नरसंहार नीति को आकार देने पर। अन्य विद्वान और पत्रकार इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। इतिहासकार डेविड मोटाडेल अपनी 2014 की पुस्तक इस्लाम और नाजी जर्मनी वॉर में तर्क देते हैं कि अल हुसैनी जैसे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यूरोप में जर्मन नीति में भूमिका निभाई लेकिन हॉलोकॉस्ट के निर्णयों पर प्रभाव डालकर नहीं। मोटाडेल जोर देता है कि नाजियों ने अल हुसैनी का उपयोग मुख्य रूप से अपनी प्रचार कोशिशों में मुस्लिम आबादी को आकर्षित करने के लिए किया, न कि उसे नरसंहार की योजना या कार्यान्वयन में शामिल किया। इसी तरह पत्रकार ओफर अड्रेट का 2015 का हारेट्स में ही लेख, जिसका शीर्षक है मुफ्ती और हॉलोकॉस्ट, उन्होंने वास्तव में क्या किया, अल हुसैनी के सहयोग की जांच करता है और निष्कर्ष निकालता है कि हालांकि वह यहूदी विरोधी प्रचार के प्रसार में शामिल था, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि उसने नाजियों के हॉलोकॉस्ट को लागू करने के निर्णय को प्रभावित किया। ये कार्य सामूहिक रूप से इस दावे को खारिज करते हैं कि अल हुसैनी ने नरसंहार को उकसाया और उनकी सीमित भूमिका को निर्णय निर्माता के बजाय प्रचारक के रूप में उजागर करते हैं। हॉलोकॉस्ट के वैचारिक और परिचालनात्मक प्रेरक, जर्मनी की एकमात्र जिम्मेदारी। हॉलोकॉस्ट नाजी जर्मनी की आंतरिक विचारधारा, नौकरशाही दक्षता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम था, न कि अल हुसैनी जैसे बाहरी प्रभावों का। नाजी यहूदी विरोधी भावना यूरोपीय इतिहास में गहराई से निहित थी, जो मध्ययुगीन रक्त आरोपों से लेकर 19वीं सदी की नस्लीय सिद्धांतों तक, जैसे कि विल्हेम मार, जिन्होंने यहूदी विरोधी शब्द गढ़ा, और ह्यूस्टन स्टुअर्ट चैम्बरलेन, जिनके कार्यों ने नाजी विचारधारा को प्रभावित किया, सैकड़ों वर्षों के यहूदी विरोधी पूर्वाग्रहों से प्रेरणा लेती थी। हिटलर के अपने लेखन, विशेष रूप से मीन कांफ 1925, यहूदियों को नस्लीय शत्रु के रूप में उनके व्यक्तिगत जुनून को प्रकट करते हैं, एक विश्वास जो अल हुसैनी के सहयोग से दशकों पहले का था। हॉलोकॉस्ट का परिचालन ढांचा जर्मन रचना था, जिसमें लाखों अपराधी शामिल थे। यूनाइटेड स्टेट्स हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम उष्ण के अनुसार पूरे यूरोप में 2 लाख से 5 लाख जर्मन और सहयोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नरसंहार में शामिल थे। नाजी पदानुक्रम में प्रमुख व्यक्ति हॉलोकॉस्ट के वास्तविक वास्तुकार थे। एडोल्फ हिटलर फ्यूहरर के रूप में हिटलर ने वैचारिक स्वर निर्धारित किया, 1939 के शुरुआती भाषणों में यहूदियों के उन्मूलन का लक्ष्य व्यक्त किया, जब उन्होंने युद्ध छिड़ने पर यूरोप में यहूदी नस्ल के विनाश की धमकी दी। उनकी नरसंहार की मंजूरी, हालांकि एकल आदेश में प्रलेखित नहीं, उनके हेनरिक हिमलर जैसे अधीनस्थों को दिए गए निर्देशों से अनुमानित है। हेनरिक हिमलर रीट सब्फ्यूहरर एसएस के रूप में हिमलर ने एसएस और अंतिम समाधान के कार्यान्वयन की देखरेख की। उन्होंने आइनसात्ज़ग्रुबेन की हत्याओं और आउशविट्स, ट्रेबलिंका और सोबीबोर जैसे मृत्यु शिविरों के निर्माण का आदेश दिया, जहां लाखों लोग मारे गए। राइनहार्ड हेड्रिक हॉलोकॉस्ट का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, हिमलर का डिप्टी। हेड्रिक ने आइनसात्ज़ग्रुबेन का समन्वय किया और जनवरी 1942 की वांसी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जहां नरसंहार को औपचारिक रूप दिया गया। उन्होंने पूरे यूरोप में यहूदियों की निर्वासन और विनाश की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एडोल्फ आइकमैन आइकमैन ने हॉलोकॉस्ट के रसद का प्रबंधन किया, यहूदियों को मृत्यु शिविरों में निर्वासित करने की व्यवस्था की। उनकी भूमिका, जो 1961 में यरूशलम में मुकदमे के दौरान विस्तृत रूप से बताई गई, लाखों लोगों की मृत्यु की ओर परिवहन की निगरानी शामिल थी, जिसने उन्हें डेथ किलर का उपनाम दिया। ये व्यक्ति दूसरों के साथ हॉलोकॉस्ट को उकसाने और उसे लागू करने में सबसे प्रभावशाली थे। नाजी विचारधारा द्वारा संचालित जो यहूदियों को जर्मन आर्य नस्ल के लिए नस्लीय खतरे के रूप में देखता था, नरसंहारिक राज्य प्रायोजित परियोजना थी, जिसे जर्मन नौकरशाही के माध्यम से सावधानीपूर्वक नियोजित और निष्पादित किया गया, जिसमें मंत्रालय, सेना और औद्योगिक क्षेत्र, उदाहरण के लिए एक फार्बिन जो जायक्लोन बी गैस का उत्पादन करता था, शामिल थे। अल हुसैनी एक विदेशी सहयोगी जिसे नाजी निर्णय लेने के वृत्तों तक पहुंच नहीं थी, ने इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाई। दावे की अतार्किक प्रकृति, ऐतिहासिक और संदर्भगत विश्लेषण। यह दावा कि अल हुसैनी ने हॉलोकॉस्ट को उकसाया, न केवल समयरेखा और उनकी सीमित भूमिका द्वारा खंडित होता है, बल्कि व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ द्वारा भी नकारा जाता है। कई कारक इस दावे को अत्यधिक अतार्किक बनाते हैं। 1. नाजी नस्लीय विचारधारा और स्वायत्तता। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार नाजियों ने अरबों, जिनमें अल हुसैनी जैसे फिलिस्तीनी शामिल थे, को नस्लीय रूप से हीन माना। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से मध्य पूर्व में ब्रिटिश नियंत्रण को अस्थिर करने के लिए रणनीतिक कारणों से उनके साथ सहयोग किया, वे उन्हें समान साझेदार नहीं मानते थे। यह विचार कि एक विदेशी अरब नेता नाजियों को नरसंहार के लिए उकसा सकता था, उनकी स्वघोषित नस्लीय श्रेष्ठता और उनकी यहूदी विरोधी भावना के आंतरिक स्रोतों से विरोधाभास करता है। 2. अल हुसैनी के प्रेरक। अल हुसैनी का सहयोग ब्रिटिश शासन और फिलिस्तीन में साइनवादी बस्तियों के खिलाफ उनके विरोध से प्रेरित था, न कि यूरोपीय नरसंहार को व्यवस्थित करने की इच्छा से। उनका प्राथमिक लक्ष्य अरब स्वतंत्रता था, और उनकी यहूदी विरोधी भावना, हालांकि महत्वपूर्ण थी, उस उद्देश्य के लिए एक साधन थी, न कि नरसंहार का एजेंडा। जेसीपी अध्ययन नोट करता है कि उनकी यहूदी विरोधी बयानबाजी इस्लामी व्याख्याओं और यूरोपीय प्रभावों से आकार लेती थी, लेकिन यह नाजी नीति के पीछे प्रेरक शक्ति नहीं थी। 3. नाजियों की पहले से मौजूद योजनाएं। नाजियों ने अल हुसैनी के आगमन से पहले ही नरसंहार की योजना शुरू कर दी थी। उदाहरण के लिए 1940 का मेडागास्कर प्लान, जिसने यहूदियों को मेडागास्कर में निर्वासित करने का प्रस्ताव दिया था, 1942-1941 में विनाश के पक्ष में त्याग दिया गया अल हुसैनी के हिटलर से मिलने से पहले। यहूदियों को सामूहिक रूप से मारने का निर्णय नाजी नेतृत्व ने बाहरी व्यक्तियों से स्वतंत्र रूप से लिया। 4. हॉलोकॉस्ट का पैमाना और दायरा। हॉलोकॉस्ट में पूरे यूरोप में 6 मिलियन यहूदियों की हत्या शामिल थी, जिसके लिए कई देशों के बीच समन्वय, मृत्यु शिविरों का निर्माण और असंख्य जर्मन अधिकारियों और सहयोगियों की मिलीभगत की आवश्यकता थी। यह विचार कि अल हुसैनी, एक विदेशी निर्वासित जिसके पास जर्मनी में कोई अधिकार नहीं था, इस तरह के विशाल ऑपरेशन को उकसा सकता था, अविश्वसनीय है। उनकी भूमिका, जैसा कि प्रलेखित है, प्रचार तक सीमित थी, जो हानिकारक होने के बावजूद नरसंहार की केंद्रीय मशीनरी को प्रभावित नहीं करती थी। जर्मनी की एकमात्र जिम्मेदारी और अपराध। जर्मनी हॉलोकॉस्ट की पूर्ण और गंभीर जिम्मेदारी वहन करता है, क्योंकि यह एक राज्य प्रायोजित परियोजना थी जो नाजी विचारधारा में निहित थी, जर्मन नेताओं द्वारा नियोजित और जर्मन संस्थानों द्वारा निष्पादित। नरसंहार बाहरी प्रभावों की प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि नाजी शासन के भीतर से उभरने वाली एक जानबूझकर नीति थी। निम्नलिखित बिंदु जर्मनी के अपराध को रेखांकित करते हैं। वैचारिक आधार। नाजी यहूदी विरोधी भावना एक स्व-उत्पन्न विचारधारा थी, जो यूरोप के सदियों पुराने यहूदी विरोधी पूर्वाग्रहों और अल हुसैनी की संलिप्तता से पहले की नस्लीय सिद्धांतों पर आधारित थी। हिटलर की यहूदियों के प्रति व्यक्तिगत घृणा, मीन कांफ और उनके भाषणों में प्रलेखित नरसंहार का वैचारिक आधार थी। राज्य मशीनरी। हॉलोकॉस्ट एक नौकरशाही प्रयास था, जिसमें एसएस, वेहरमाक्ट, जर्मन रेलवे सिस्टम, डाइची रीडसबान और निजी उद्योग शामिल थे। वांसी कॉन्फ्रेंस, जिसमें वरिष्ठ नाजी अधिकारी शामिल थे, ने नरसंहार को औपचारिक रूप दिया और मृत्यु शिविरों को जर्मनों द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया, जिन्हें कब्जे वाले क्षेत्रों में सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था। मिलीभगत का पैमाना। उष्म का अनुमान है कि 2 लाख से 5 लाख जर्मन और सहयोगी शामिल थे, एसएस अधिकारियों से लेकर साधारण नागरिकों तक जो यहूदी संपत्ति की जब्ती में भाग लेते थे या उससे लाभ उठाते थे। जर्मन समाज के भीतर यह व्यापक मिलीभगत राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। युद्ध के बाद की जिम्मेदारी। नूरेमबर्ग ट्रायल्स 1945-1946 ने नाजी नेताओं को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया, जर्मनी की जिम्मेदारी की पुष्टि की। हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस और जोआकिम वन रिबेंट्रॉप जैसे व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया, जबकि अन्य, जैसे आइकमैन, बाद में मुकदमे और सजा पाए। ट्रायल्स ने स्थापित किया कि हॉलोकॉस्ट जर्मनी द्वारा आयोजित अपराध था, जिसमें अल हुसैनी को महत्वपूर्ण उकसावे के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। अल हुसैनी का सहयोग, हालांकि नैतिक रूप से निंदनीय था, जर्मनी की जिम्मेदारी को कम नहीं करता। उनके कार्य प्रचार प्रसारण और मुस्लिम सैनिकों की भर्ती नाजी युद्ध प्रयासों में योगदान देते थे, लेकिन हॉलोकॉस्ट को लागू करने के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं डालते थे। नरसंहार उसके वैचारिक गर्भाधान से लेकर परिचालन निष्पादन तक एक जर्मन पहल थी, और अल हुसैनी पर दोष मढ़ने की कोशिशें जर्मनी के अपराध को हटाने की ऐतिहासिक संशोधनवाद की एक रूप है। निष्कर्ष। यह दावा कि हाज अमीन अल हुसैनी ने हॉलोकॉस्ट को उकसाया, एक विकृति है जो ऐतिहासिक साक्ष्यों के बोझ तले ढह जाती है। हॉलोकॉस्ट की समय रेखा, जो अल हुसैनी के नाजियों के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव से पहले शुरू हुई, इस दावे को कालानुक्रमिक रूप से असंभव बनाती है। उनकी भूमिका, जैसा कि जेसीपी अध्ययन, डेविड मोटाडेल और ओफर एड्रिड जैसे पत्रकारों द्वारा प्रलेखित है, प्रचार और प्रतीकात्मक समर्थन तक सीमित थी, न कि नीति निर्माण या उकसावे तक। हॉलोकॉस्ट नाजी जर्मनी की आंतरिक विचारधारा का परिणाम था, जो हिटलर, हिमलर, हेड्रिक और आइकमैन जैसे नेताओं द्वारा संचालित था और लाखों जर्मनों को शामिल करने वाली एक विशाल नौकरशाही मशीनरी के माध्यम से निष्पादित किया गया। जर्मनी हॉलोकॉस्ट की पूर्ण और गंभीर जिम्मेदारी वहन करता है, एक ऐसा अपराध जो उसकी अपनी यहूदी विरोधी परंपराओं और राज्यतंत्र में निहित है। अल हुसैनी का सहयोग, हालांकि उनके विरासत पर एक धब्बा है, इस मौलिक सत्य को नहीं बदलता। उन पर दोष मढ़ने की कोशिशें एक व्यापक एजेंडे को दर्शाती हैं जो इतिहास को विकृत करने की कोशिश करती हैं, अक्सर समकालीन राजनीतिक कथनों की सेवा के लिए। ऐसा संशोधनवाद न केवल अतीत को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, बल्कि नाजी जर्मनी को मानव इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक के लिए जवाबदेह ठहराने के नैतिक कर्तव्य को भी कमजोर करता है। हॉलोकॉस्ट का अपराध पूरी तरह जर्मनी पर है, और कोई भी ऐतिहासिक विकृति इस तथ्य को नहीं बदल सकती।